कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, किम शील है, किम समाचार है, किम विद्या है, किम पराक्रम है, प्राप्नोति ब्रह्मण स्थानम यत्परम प्रकृतेर ध्रुवम। ऐसा कौन सा शील स्वभाव है, ऐसा कौन सा सदाचार है, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा पराक्रम है जिससे प्रकृति से पर परमात्मा को हम प्राप्त कर सकें। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, एक तो मिताहारी बनो। मिताहारी माने कम खाओ। कम खाने का अर्थ केवल पेट के लिए नहीं, जब कम खाओ मतलब रोटी कम खाओ ऐसा नहीं, रोटी भी कम खाओ माने सब इंद्रियों से उतना ही व्यवहार करो जितने की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए मिताहारी बनने से और जितेंद्रिय होने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। इस विषय में एक बड़ा सुंदर इतिहास याद आया है। एक ऋषि थे जिनका नाम था जैगी सव्य। एक बार जैगी सव्य के पास में देवल ऋषि पहुंच गए। बड़े बुद्धिमान थे जैगी सव्य और धर्म को जानने वाले थे, शास्त्र को भी जानने वाले थे। कितना ही कोई कैसा भी शब्द कहे, कुछ भी कहे, उनको क्रोध नहीं आता था। कितना ही उनका कोई आदर करे तो कभी उनके मन में खुशी नहीं होती थी। ऐसा उनका स्वभाव देखकर देवल ऋषि ने कहा, हे महाराज, इतने बड़े बड़े राजा लोग आपका आदर करते हैं, आपके अंदर कभी कोई उसमें प्रसन्नता नहीं होती, और निंद्य मानो न कुप्य से, कभी कभी आपकी हम देखते हैं कि तुच्छ आदमी आपके लिए इतने कड़वे शब्द बोलते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर सिवाय मुस्कुराहट के दूसरी कोई बात नहीं, बड़े एकदम प्रसन्न रहते हैं। आपके अंदर ये कहां से ज्ञान उपजा है, ये स्वभाव से ही है कि कोई आप में विशेष ताकत आई है। जैगी सव्य ने कहा कि देखो देवल जी, मनुष्य के पास में ये सब शक्तियां रहती हैं। क्रोध के अवसर पर क्रोध न करे और प्रसन्नता के अवसर पर प्रसन्न न हो, ऐसी शक्तियां रहती हैं। मनुष्य को निंदा की अवस्था में सम रहने का और प्रशंसा की अवस्था में भी हर्षित न होने का, और निहुनन्ति च येषां समयं सुकृतं तयत्, और कोई आदमी हमारे गुणों के ऊपर पर्दा डालता हो, यार कहेगा कुछ नहीं जानते हम इसको, कोई ऐसे करके हमारे गुणों के ऊपर पर्दा डालता हो, इन तीनों अवस्थाओं में जो सम रहता है वो एक बुद्धि बनाता है। ये स्वभाव की बात नहीं है, कोई साहब पिछले जन्म का स्वभाव है, ये चीज स्वभाव से नहीं होती है। जन्म जन्मांतर के स्वभाव से तो हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, लेकिन ये जो विद्या है कि अनुकूल और प्रतिकूल में हम सम रहे हैं, ये मनुष्य साधना से बनाता है। कटुवचन कह दे तो उसको कटुवचन न कहे, यहां तक कि कोई हमारा अहित करे तो उसका अहित न करे, बदले में वैसा काम नहीं करना चाहिए। देवल ने कहा महाराज ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कहा कि देखो देवल जी, किसी ने हमारा बुरा किया तो उसके मन में बुराई है, तभी तो उसने बुरा किया। तो यदि उसकी बुराई से हमने भी बुरा किया तो फिर हमारे में उसमें क्या अंतर हुआ? यदि हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे और उल्टा उसके साथ भला करेंगे तो जैसे उसके बुराई से हम बुरा करने के लिए तैयार हो गए तो क्या हमारे भला करने से वो भला करने के लिए तैयार नहीं होगा? पर वो भला करे न करे अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रति हंतुम नचिच्छन्ति हंतारम वही मनीषिणः। दूसरी बात यह है कि जो अभी परिस्थिति आई नहीं है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। तुमने पूछा ना कि हर्ष और शोक के अंदर आपकी बुद्धि बिगड़ती क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं बिगड़ती है कि हम आने वाली परिस्थिति के अंदर कभी कोई डरते नहीं, आएगा तो आ जाएगा, चला जाएगा, चला वो भी चला जाएगा। और जो परिस्थिति बीत गई उसके लिए तो शोक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो तो है ही नहीं अभी, और जो परिस्थिति आई नहीं वो भी नहीं है, और वर्तमान में कि वर्तमान की परिस्थिति होती है उसका तो उपयोग करना है, उसमें हमारे कर्तव्य को देखना है। ये वर्तमान परिस्थिति आई हमको क्या करना चाहिए, भूतकाल की तो चीज बीत गई, आने वाली है नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि के साथ मिलाने से उनकी बुद्धि की बात हमारे अंदर आ जाती है। जैसे एक जलती हुई लकड़ी है, काष्ठ लकड़ी, जलती हुई लकड़ी के साथ हम एक लकड़ी और मिला दी तो उस लकड़ी की अग्नि इसमें प्रकट हो जाती है। ऐसे ही महात्मा पुरुष जो पक्व विद्या महाप्राज्ञा जितक क्रोधा जितेंद्रिया ऐसे पुरुष होते उनके पास मनुष्य को रहना चाहिए। ऐसा करने से अपने अंदर अपराध करने की भावना समाप्त हो जाती है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखो जयगीश, देखो देवल, ईर्ष्या होती है किन से? जिनको हम जानते नहीं है वो खूब सुखी होते, उनसे ईर्ष्या नहीं होती, उनसे ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या होती है अपनों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने से कि ये हमसे आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि को ऐसे मेले चीजों में पटकना नहीं चाहिए, तब बुद्धि काम करती है। निंदा में और प्रशंसा के अंदर समय खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे पुरुषों की बुद्धि सदा प्रसन्न रहती है, अपने हृदय की गांठ को खोलना चाहिए और सर्वत्र विराजमान परमात्मा का आनंदानुभव करना चाहिए। उनको बार बार ये समझना चाहिए कि न कोई हमारा भाई है, न बंधु है, न वस्तु है, कोई हमारा नहीं है। अन्येषां न बांधवः, और दूसरे भी भाई बंधु ये कोई हमारे नहीं है। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा है। ऐसे आदमी सदा सुखी रहते हैं, केवल अपने धर्म पर दृष्टिपात करते हैं। तो ऐसे मार्ग का अनुसरण किया है, इसलिए देवल मेरी बुद्धि कभी यहाँ मान अपमान के अंदर फंसती नहीं है। तुम कहो तो मैं और एक दो बात कहूं कि महाराज वही तो सुनने के लिए आया हूं। मनुष्य की कोई निंदा करता हो और उससे वो लोग खूब आनंदित होते हो तो उनके आनंद को देखकर स्वयं आनंदित हो जाए। अमृतस्यैव संतृप्येत। देखो यदि हमारा कहीं अपमान होता है तो उसमें ऐसा समझना चाहिए कि अमृत के गुटके हैं, अमृत का गुटका पी करके जैसे तृप्त होता है ऐसे तृप्त होना चाहिए। कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात है। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, अपना अपमान नहीं सह सकता, पर लिखा यह है अमृतस्यैव संतृप्येत अवमानस्य तत्ववित् और विषस्यैव द्विजे नित्यम सम्मानस्य विचक्षण है। और सम्मान से डरते रहना चाहिए, कहीं सम्मान मिले तो उससे डरो, अपमान मिले तो अमृत के समान उसको बढ़ो, समझ करके उसको पियो। ऐसा मनुष्य संसार में निर्द्वंद्व होकर विचरण करता है, ऐसा आदमी परम गति को प्राप्त होता है, वो सुखी होता है। समस्त काम्य कर्मों का परित्याग करके और अपने इंद्रियों को वश में रख करके चलता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा का अनुसरण न देवता कर सकते, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, कोई नहीं कर सकते। वो अपने आप के अकेले मार्ग में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसको कोई नहीं पहुंच सकता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महामहाराज इन बातों पर तो मनुष्य का सहज ध्यान जाता ही नहीं है। अपमान अमृत जैसा लगे और दूसरे व्यक्तियों को हमारे अपमान से आनंद मिलता है तो आप भी आनंदित हो जाओ, कठिन होता है महाराज। कि देखो महाराज जनक की सभा के अंदर अष्टावक्र जी आए, उनका शरीर आठ जगह से टेढ़ा, कंधे से भी टेढ़ा, गर्दन से भी टेढ़ा, कमर से भी टेढ़ा, घुटने से भी टेढ़ा, पैर भी यूं टेढ़े मेढ़े, ऐसे उंगलियां ये भी यूं टेढ़ी, आठ जगह से टेढ़े मेढ़े थे वो, कोहनी यहां भी टेढ़ा। जितने संधान है, एक दो तीन चार पांच छह, ये सात आठ, ये सब, इन सब संधानों में टेढ़ापन था उनके। तो ये टेढ़ापन देख करके और राजा जनक के दरबार में रहने वाले सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, तो अष्टावक्र जी भी हंसने लग गए। हा हा हा, जो ही अष्टावक्र जी हंसे सब चुप हो गए एकदम। जनक जी ने पूछा कि आप लोग क्यों हंसे, कि महाराज एक विचित्र शरीर यूं था इसलिए हंसे। अष्टावक्र जी से कहा, ऋषिवर गुरुदेव आप क्यों हंसे, ये हंसे तो मैं हंस दिया, ये तो आपके टेढ़े मेढ़े पर हंस रहे थे आप, मैं इनकी मूर्खता पर हंस रहा था। कि आदमी की परीक्षा शरीर से करते हैं, ज्ञान से नहीं करते हैं। मुझसे कोई शास्त्र की बात पूछते और मैं इनको नहीं बता पाता फिर ये हंसते, तब तो कोई बात भी। लेकिन ये मेरे शरीर को देखकर हंसे तो इनकी अज्ञानता पर मैं हंसने लग गया। जनक जी ने कहा कि देखो भाई, हंसने की सुखानुभूति क्या आप सबको बराबर हुई? अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा हुई। इनकी ये जाने पर इनको जितना सुख का अनुभव हुआ होगा हंसने से, मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। आपको ज्यादा कैसे हुई गुरुदेव? कि एक तो ये सुखी है इसलिए मैं सुखी हो गया, ये हंस रहे हैं ये सुखी है इसलिए सुखी हो गया, और दूसरा तो ये है ही कि भाई ये मेरे शरीर को देख कर हंसे, मैं इनकी अकल को देख कर हंसा। इसलिए अमृत के समान होता है अपमान। युधिष्ठिर जी ने कहा, पितामह, आप हमारे शरीर के भी दादा हो तो ज्ञान के भी दादा हो, कितना बढ़िया ज्ञान सुना रहे हो। ऐसा संसार में कोई मनुष्य है का कि जो सर्वै गुणै उपेतश्च, सारे गुण जिसमें मौजूद हो और सबको वो प्रिय लगता हो, ऐसा कोई आपको दिखता है संसार में? आप भगवान कृष्ण के लिए कहोगे लेकिन भगवान कृष्ण दुर्योधन को प्रिय नहीं लगे, कौरवों को प्रिय नहीं लगे, दुष्टों को प्रिय नहीं लगते। हम पूछते सर्वप्रिय कौन है? पितामह ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण भगवान ने पितामह की ओर देखा, दोनों ने मुस्कुरा करके एक दूसरे के भाव जान लिए और फिर कहने लगे कि सुनो युधिष्ठिर, हम तुमको सुनाते हैं एक बार इन श्री कृष्ण का और उग्रसेन का संवाद हुआ। उग्रसेन कंस का बाप, उन दोनों की बात मुझे याद आई है। उग्रसेन ने कहा कि हे कृष्ण, ये नारद जी की सब लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, नारद जी को सभी लोग चाहते हैं, वो उत्तम गुणों से संपन्न है, इसका क्या कारण है? तो वासुदेव कृष्ण ने कहा कि हे उग्रसेन जी, नारद के गुणों को आप देखिए। नारद जी महाराज का चरित्र एकदम निष्कलंकित है, उनके अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार होने से खुद के चरित्र में भी मलिनता आती है और लोगों को भी वो बुरा लगता है, इसलिए उनके अंदर शास्त्र ज्ञान भी है, चरित्र बल भी है और इसका अहंकार उनके अंदर नहीं है, इसलिए नारद जी सबको अच्छे लगते हैं। नारद जी के अंदर क्रोध नहीं है, चपलता नहीं है, भय नहीं है और अप्रियता नहीं है, इस कारण से नारद जी कभी किसको बुरे लग ही नहीं सकते। एक अदीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री माने काम अभी सलटा सकते हैं, नहीं बाद में देख लेंगे यार क्या है, फिर बाद में पढ़ाएंगे, बाद में देख लेंगे, इसका नाम है दीर्घ सूत्री। आलस्य से भी ज्यादा दीर्घ सूत्री खराब है। तो दीर्घ सूत्री नहीं है नारद जी, जो काम जिस समय करना 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 है उसको उसी समय करना है। तस्मात सर्वत्र पूजिते है नारद जी, किसी को कोई भी बात बोलते हैं तो उस समय नारद जी के मन में न क्रोध की भावना है, न कोई कामना की भावना है, न लोभ की भावना है। नारद जी की बुद्धि, नारद जी का ज्ञान, नारद जी की विनयशीलता, ये सबसे बढ़कर है, इसलिए नारद जी की सबसे ज्यादा पूजा होती है। और कल्याणम कुरुते वाढ़म, नारद जी के पास चाहे देवता आए, चाहे दैत्य आए, चाहे दानव आए, चाहे मानव आए, सबको कल्याण की बात बोलते हैं, सबका हित चाहते हैं। और दूसरों को दुखी देख करके वे कभी भी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए नारद जी महाराज की पूजा सब जगह होती है। सर्वत्र समभाव रखते हैं, वो पंडित हैं, अधीन है, अधीन, वो दीन नहीं बनते किसी के सामने, ये देवरिया मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं गरीब हूं ना, कोई चीज की आवश्यकता नहीं समझते। नार्थे धनेवा कामेवा भूतपूर्वोस्य विग्रह है, अर्थ में कि धन में कि कामना में नारद जी का कभी भी किसी के साथ विग्रह नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए नारद जी की सब जगह पूजा होती है। समाधि नाश्य कर्मार्थ है, उनका मन कभी भी विषय भोगों में नहीं जाता है, इसलिए नारद जी की पूजा होती है। एक अनीर्षु है, ईर्ष्या किसी से नहीं रखते हैं, मृदु संवाद है, बोलने में बड़ी कोमलता है, पहले मुस्कुराएंगे और बाद में बोलेंगे, सभ्यता है ये, पहले मुस्कुराएंगे और फिर बोलेंगे और सीमित शब्दों में बोलेंगे। लोगों की अनेक प्रकार की वृत्तियों को और आचरणों को देखते हुए भी वे किसी की प्रशंसा निंदा नहीं करते। नासु ये त्यागमम किं कंचित, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखते। शास्त्रों की भी अलग अलग बातें होती हैं, उन अलग अलग बातों में कोई खंडन मंडन में नहीं जाते। और अवंध्य काल है, अपने समय को कभी खराब नहीं करते। और भगवान के अंदर ध्यान करते करते उनको कभी तृप्ति नहीं होती, कभी इतना ध्यान कर लिया बहुत, ऐसा नहीं होता। नच तृप्त समाधित है, वे लज्जा भी रखने वाले हैं और लज्जा नहीं भी रखते हैं। भगवत स्मरण में कोई लज्जा नहीं रखते हैं और लौकिक व्यवहार में बड़ी लज्जा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सर्वत्र पूजनीय होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात बताई आपने, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है और संपूर्ण प्राणी किस में लीन होते हैं, ध्यान क्या होता है, कर्म का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए और काल का क्या स्वरूप है, इस विषय में आप हमको बताइए। पितामह भीष्म कहते हैं कि इस विषय में सुखदेव जी का और व्यास का खूब लंबा चौड़ा संवाद हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने खूब अच्छा अध्ययन कर लिया वेदों का, उपनिषदों का, खूब अच्छा अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने धर्म विषयक प्रश्न करने के लिए अपने पिता व्यास जी से निवेदन किया, भूतग्रामस्य कर्तारं कालज्ञाने च निश्चयं ब्राह्मणस्य यत्कृत्यं तद् भवान् वक्तुम् अर्हति। हे महाराज, समस्त प्राणियों को किसने पैदा किया और काल के विषय में आपका क्या मत है, ये हमको बताओ। तो व्यास जी कहने लगे कि देखो, ये काल क्या है, ये काल इस सृष्टि का सूक्ष्म तत्व है। सृष्टि के उपयोगी जितने तत्व हैं उसमें काल सूक्ष्म है, इसलिए काल को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, परंतु वो काल होता जरूर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बताते हैं कि 15 निमेश की एक काष्ठा होती है, निमेश ये ये 15 निमेश होते हैं तो एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला और एक काष्ठा मिलकर के मुहूर्त कहलाता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है और उतना ही दिन उतनी रात्रि मानी जाती है, 30 रात्रि और 30 दिन का मिला करके महीना कहलाता है और 12 महीने का एक संवत्सर एक साल कहलाता है। पितरों के अंदर 12-15 दिनों का एक दिन होता है, हमारे यहाँ का 15 दिन, पितरों का एक दिन होता है। हमारे यहाँ की 15 रात्रियां होती हैं, वो रात्रियां पितरों के यहाँ रात होती 15 दिन की, 15 दिन का फर्क रहता है। शुक्लो है कर्म चेष्टायाम कृष्ण स्वप्नाय सर्वरी, दिन होता है वो काम करने के लिए होता है, रात्रि होती है वो काम करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम की घड़ी होती है। देवताओं के यहाँ मनुष्य के यहाँ से 360 गुना ज्यादा कालमान होता है, हमारे यहाँ एक वर्ष होता है, वो देवताओं के यहाँ एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का मैं कालमान बताता हूं कि 4000 वर्ष का, 4000 दिव्य वर्ष का एक सतयुग होता है, 3000 दिव्य वर्ष का एक त्रेतायुग होता है, 2000 का एक द्वापर होता है और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। तो 1, 2, 3, 4 सबसे खराब समय होता है, उसमें सबसे कम समय मिला, उससे थोड़ा अच्छा द्वापर है तो उसको कलयुग से दुगना समय मिला, और उससे थोड़ा अच्छा त्रेता है तो उसे कलयुग से 3 गुना मिला, और उससे अच्छा सतयुग है तो कलयुग से 4 गुना ज्यादा मिला। तो 4000, 3000, 2000, 1000, 4, 3, 7 और 2, 9, 10000 बरस तो ये हो गए। अब इनमें एक संध्यंश होता है, ये संध्यंश माने ये मिलते हैं उसका एक समय अलग है, अभी तो यूं है ये, फिर यूं मिलते हैं यूं, तो इनका कालमान अलग होता है। चौथा ये यूं, चार है यूं, ये मिलते हैं तो इनका कालमान अलग होता है, वो कालमान होता है जैसे 4000 वर्ष है तो यहाँ 800 वर्ष रहेगा, ये 3000 वर्ष है तो 600 वर्ष रहेगा, ये 2000 वर्ष है तो यहाँ 400 वर्ष रहेगा, ये 1000 वर्ष है 200 वर्ष रहेगा, ऐसे करके 2000 ये हो गए, इस प्रकार 12000 वर्ष हो गए। 12000 वर्षों का यह एक ब्रह्मा जी का दिन हुआ, ये 12000 दिव्य वर्षों का है, ये ऐसे ब्रह्मा जी की रात होती है। फिर जो है व्यास जी महाराज कहते हैं कि तुमने पूछा कि संसार किससे पैदा होता, एक परब्रह्म परमात्मा से, उस समय कोई नहीं था, एक भगवान ही थे भगवान, ब्रह्म तेजोमयम शुक्रम यस्य सर्वमिदं जगत एकस्य ब्रह्म भूतस्य द्वयम् स्थावर जंगमम, उसी से ही स्थावर जंगम दो की उत्पत्ति हुई। कई इसमें लंबे चौड़े प्राय लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति से सब ये प्राणी भूत सब पैदा हुए, बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया, और फिर सबका कर्तव्य का निर्धारण ब्रह्मा जी ने किया, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, गृहस्थ होता है वो सब आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ, गृहस्थेश धर्माणाम सर्वेशाम मूलम उच्यते यत्र पक्व कषाय स्यात्, जहां पर सारे दोष एकदम नष्ट हो जाते हैं। दांत सर्वत्र सिद्ध्यति, गृहस्थ के अंदर मनुष्य संयमी ज्यादा होता है, इसलिए उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। पृथ्वी पर कहीं रहे, किसी प्रकार से रहे, परंतु वह अपने कर्तव्य के अंदर रहे। गृहस्थ के अंदर त्याग होता है, क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं का अकेला उपयोग नहीं करता, माता पिता भाई बंधु सबके लिए करता है। नैकोष्णीयात कथंचन है, ब्राह्मण का विशेष ध्यान रखना चाहिए गृहस्थी व्यक्ति को। सत्यसंध नाम का राजा था, उसने एक ब्राह्मण की रक्षा की तो स्वर्ग लोक में चला गया। रंतिदेव ने वशिष्ठ जी महाराज को जल पिलाया, बड़े प्यासे थे, उनकी परीक्षा ली। देखो परीक्षा भी कैसे लेगी, रंतिदेव जी खुद बड़े प्यासे, बड़े दिनों के भूखे प्यासे, और वशिष्ठ जी आए। कोई तो कहते हैं वशिष्ठ जी ब्राह्मण बनकर नहीं आए, चंडाल का रूप बनाकर आए। कहने लगे मैं चंडाल हूं, बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ। हेलो भाई, वशिष्ठ जी ने इसलिए चंडाल का रूप बनाया कि वशिष्ठ जाने वशिष्ठ है ऐसा समझ के तो प्रेम से जल दे देंगे, लेकिन चंडाल नीचा बनकर के जाओ, देखें ये प्रेम से देता है कि दुत्कारता है कि पिलाता है, क्या करता है। तो वो बोले कि भाई मैं चंडाल हूं, मुझे जल पिलाओ। ऐसे वो बोले तो अच्छा ले भाई, बड़े प्रेम से लो भाई। कह महाराज मैं चंडाल हूं, आप भी तो प्यासे हो, क्या हो गया, तुम्हारे अंदर भगवान तो है ही ना, लो जल पियो। वो जल पिलाए तो भाई रंतिदेव को भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ही इंद्र दमन था, सब लक्ष्मी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी, तो अक्षय लोक में दिव्य लोक में चला गया। ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए। मनुष्य अपने कर्म का ठीक ढंग से पालन करता है तो वो कर्म नदी से पार हो जाता है। कर्म नद है, नद में नदी नहीं, नदी तो छोटी होती है, नद है। वो व्यक्ति पापों से रहित होकर और काम क्रोध को जीतकर ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हो जाता है। जब मन में कामनाएं रहती हैं तो उसका चित्त बड़ा चंचल रहता है, फिर उसका काम नद से पार होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही अपने चित्त को संयत रखे। क्रोध और दोष दृष्टि है, ये बहुत खराब स्वभाव की चीज है। सताम धर्मेण वर्तेत, सत्पुरुषों के मार्ग पर चले और श्रुति और विज्ञान के तत्व को समझते हुए चले। परमात्मा का ध्यान करे, ध्यान करे तो उस समय में ये देखे कि ये पृथ्वी है, ये जल से पैदा हुई है, जल है वो अग्नि से पैदा हुआ है, अग्नि है वो वायु से, वायु आकाश से, आकाश बुद्धि से और बुद्धि अहंकार से, ये सात आवरण है। तो एक पृथ्वी पृथ्वी का चिंतन करे तो अपने शरीर को भूल जाए। फिर पृथ्वी का कारण जल है तो जल ही जल का या चिंतन करे, जल ही है, जल ही है, जल ही है ऐसे। फिर आग है, फिर वायु है, फिर आकाश है, फिर उसके बाद बुद्धि है, अहंकार है, और उसके बाद प्रकृति है, और उसके बाद आत्मा है। ऐसे आत्मा में स्थित हो जाए। निर्मुच्यमान सूक्ष्मत्वाद रूपाणी मानी पश्यत है, देहाभिमान से मुक्त होकर जब वो आत्मा में स्थित होता है तो उस समय वो ये न माने कि मैं आत्मा में स्थित हो रहा हूं, ऐसा न माने। मैं को और उनको सबको ऐसे ही ढक देवे जैसे जोर से बाढ़ आती है तो नदी का तालाब, नदी का किनारा सब उस बाढ़ के अंदर, पानी के अंदर डूब जाता है। कोई किनारे वगैरह कुछ नहीं दिखते, डूब जाता है। ऐसे मैं ध्यान करता हूं और मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं, अब ध्यान कर रहा हूं और देखो दूसरे तो करते नहीं है, मैं ध्यान करता हूं, ऐसी ऐसी भावना यदि आती है तो वो अपने आप का ही ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान नहीं करता। ऐसा ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने ध्येय के अंदर लीन रहता है। ममता का, अहंकार का, द्वंद्वता का नाश करो। नैव क्रुध्यति न द्वेष्टि नान्यता भासते गिरह। और कभी झूठी बात नहीं बोलता, कभी क्रोध नहीं करता, कभी द्वेष नहीं करता और वाणी से भी किसी को दंड नहीं देता, कर्म से भी नहीं देता, मन से भी नहीं देता। संपूर्ण प्राणियों में अपने ही परमात्मा का दर्शन करके आनंद मनाता है। ये भी भगवान का रूप है, यही भगवान का रूप है। लोग कहते हैं कि सब भगवान का रूप है, तो दुष्ट और पापी भी भगवान के ही रूप है क्या? कि है तो वो भगवान है, तो फिर वे पाप क्यों करते हैं? भगवान उनके अंदर है तो पाप करने क्यों देते हैं? दो बात बोलते हैं अपने शास्त्र, एक तो सब में भगवान है और एक सभी भगवान है। तो सभी भगवान है तो भाई फिर ये लोग पाप क्यों करते हैं? भगवान तो पाप करते नहीं, तो लोग पाप क्यों करते हैं? और सब में भगवान है तो जो लोग पाप करते हैं उनके अंदर भगवान आकर के पकड़ कर उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते कि तुम गाय काटते हो, तुम दुराचार करते हो, उनमें से भगवान प्रकट होकर के उनके पाप को रोके। तो देखो ये जो बात कही जाती है कि सब में भगवान है और सब भगवान है, ये तत्वतः बताई जाती है। अभी कोई यहां गंगा जल पड़ा है, गंगा जल रखा है, तो कहेंगे आप ये गंगा जी है। अब ये गंगा जी तो डुबकी लगाओ देखें कि ये डुबकी लगाने के लिए गंगा जी नहीं है, ये तो गंगा जल थोड़ा सा आचमन करने, इसमें कहां डुबकी लगाएंगे? इसमें तो पूरा हमारे खुद के शरीर का ये माथे माथे में पानी नहीं फैलेगा, ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है। अपने को पानी दिखता है, श्रद्धालु को रे साक्षात गंगा जल है, भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगा जल है। तो उस गंगा जल में जो पवित्रता है, वो पवित्रता का भाव भाव जो है हमारा गंगा जी में भाव होगा तो इसमें पवित्रता का भाव होगा। तो भगवान सब में है ये बात श्रद्धालुओं के लिए कार्य रूप से नहीं देखी जाती है। अब गंगा जी में स्नान करते हैं, इसमें हम कहां स्नान करेंगे साहब, बोतल में का पानी कहां स्नान करेंगे? हम तो गंगा जी गए हुए स्नान किए हुए, वहां ये गंगा जी नहीं है। गंगा जी नहीं है कैसे बोलते हो भाई? गंगा जी का ही जड़ है, वहां से तो यहां हम क्या अनुमा, ये जड़ और वो जड़ एक है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणियों में जो आत्म तत्व है वो तत्व दृष्टि से भगवान है, इसलिए सब में भगवान है। वहां किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देवे और किसी के लिए मना करें, ये काम करने के लिए भगवान नहीं है वहां। तो पाप से रोकते क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोकते कि अगला आदमी पाप से रुकना चाहता ही नहीं। यदि अगला आदमी पाप से रुकना चाहे तो भगवान रोक देंगे उसको, किसी भी उपाय से रोको, रोक देंगे। भगवान किसी भी उपाय से रोक देंगे। अस्तु, तो सब में भगवान के दर्शन करते हैं। समलोष्टास्म कांचन है, और चाहे पत्थर हो और चाहे सोना हो, उसके अंदर एक ही बुद्धि रहती है कि प्रकृति का कार्य, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ध्यान के बाद प्रगाढ़ स्थिति होती है। स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी, ये सब के सब परमात्मा से पैदा हुए, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज चार प्रकार के जीव हैं, सब भगवान से पैदा हुए। इन जीवों में सबसे उत्तम मनुष्य को माना गया है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण किया है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। वेदादि शास्त्र भी मनुष्य के लिए है। तो तपस्या करना, व्रत करना, दान पुण्य करना, भगवान का ध्यान करना, आत्मकल्याण करना, ये सब मनुष्य के लिए है। अतएव मनुष्य सब योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, किसी भी उपाय से चलो, भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। इंद्रियाणि मनोयुंक्ते वश्यान यन्ते वाजिन है, ये जगह जगह बात आती है। इंद्रियां तो घोड़े हैं और मन लगाम है, इसलिए मनुष्य को इस मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और अपना मन यदि इंद्रियों से साठ गांठ करके इंद्रियों को पदार्थों में खुला छोड़ता है, तो वो अपने जो है घोड़े घोड़े की जैसे रास है, उसको खुली छोड़ देने पर घोड़ा चाहे जैसे दौड़ता है, इसी प्रकार से इंद्रियां विषयों में दौड़ती है। तो मन का भी, इंद्रियों का निग्रह मन से करो और मन का निग्रह बुद्धि से करो और बुद्धि का निग्रह स्वयं के द्वारा करो। सारथी होता है वो बुद्धि का रूप होता है और रथी होता है वो आत्मा का रूप होता है। परमात्मा की तरफ चलो, वे परमात्मा न तद ऊर्ध्वम, न तो वो ऊंचे हैं, न तिर्यक न तीछे हैं, न अधय न नीचे हैं, न दाएं हैं न बाएं हैं, न उनका बीच है, न उनका आदि है, न उनका अंत है। संपूर्ण लोगों के भीतर भी है, सबसे बाहर भी है, अलग भी है। उस परमात्मा के लिए उल्टी पुल्टी बातें इसलिए कही जाती है कि उसका रूप है ही ऐसा। स्थावर जंगम सभी प्राणी उस परमात्मा के अधीन है। और आत्मा को हंस कहा गया, हंस, हंसोक्तम चाक्षरम चैव कूटस्थम तद अक्षरम। इसलिए मनुष्य को आत्म तत्व का विचार, आत्मा रामेण बुद्धेन, आत्मा रामेण बुद्धेन बोद्धव्यम शुचि कर्मणा, आत्म तत्व का खूब गहरा विचार करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करें, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की वाणी का अध्ययन करें, दान पुण्य करें और पाप कर्म से लाज आनी चाहिए। शरीर आदि से सरलता का बर्ताव हो, क्षमा भाव होना चाहिए, शौचाचार होना चाहिए और सब प्रकार से इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। एतेर विवर्धते तेज है, इससे मनुष्य का तेज बढ़ता है। इतना ही नहीं, सिद्ध्यन्ति चास्य सर्वार्था, उसके सब मनोरथ सफल होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कोई ऐसा मंत्र बताओ और हमारा काम बन जाए। ये शास्त्र बोलते हैं कि आप अपने पवित्र आचरण में रहो, आपके कोई काम बाकी नहीं रहेंगे। कल्याण करने के लिए सब मार्ग खुला है, चाहे कोई वर्णावकृष्ट हो, वर्णावकृष्ट माने नीच वर्ण का हो, नारी वा कोई स्त्री हो, लेकिन कल्याण की इच्छा रखने वाले हो, इस मार्ग पर चलते उनको परम गति की प्राप्ति होती है। कर्म और ज्ञान इन दोनों का अंतर बताते हुए दोनों को अपनी अपनी जगह ठीक बता रहे हैं व्यास जी महाराज। ऐसे खूब लंबा चौड़ा इनका वर्णन चला है और उसके अंदर गृहस्थ धर्म के लिए बात बताई है कि गृहस्थ जो होता है वो सुबह शाम दोनों समय यज्ञ करे। एक यज्ञ होता है आहुति वाला, एक यज्ञ होता है भोजन वाला। तो सबको भोजन कराए, उसके बाद भोजन करे। यदि कोई घर में आज भोजन करने के लिए अतिथि नहीं आया है तो उसकी प्रतीक्षा करो, अपने समय तक प्रतीक्षा करो। और कोई आवे ही नहीं तो मन के अंदर विचार आना चाहिए कि आज किसी अतिथि की सेवा नहीं हो सकी, आज अतिथि की सेवा नहीं हो सकी, क्या करें, ऐसे उसके मन में भाव रहना चाहिए। भृत्यशेषम तो योष्णाति तमाहुर विगसासिनम, वही बात है, भोजन करने के बाद जो बच जाए, सबके भोजन करने के बाद वो भोजन बड़ा सुंदर, बड़ा मीठा और अमृत जैसा होता है, अमृत स्वरूप होता है। गृहस्थ में अपने इंद्रियों को खुला न छोड़े और माता पिता की सेवा करे, गुणों के अंदर अवगुण न ढूंढे, दूसरे के कोई आदमी गुण बताए तो उसे स्वीकार करे और अपने परिवार के अंदर अपनी तरफ से कभी कोई विवाद न करे, विवादम न समाचरेत। जो आदमी देखो एतिर जितस्तु जयतिर सर्व सर्वान लोकान न संशय, जो अपने परिवार में सबसे हारा हुआ है कि हाँ साहब भाई आप जीते मैं हारा, यूं बनावटी नहीं, चुभने के लिए नहीं, हृदय से माने कि मैं हार गया हूं आप सब ठीक हैं, तो एतिर जीत है। यदि परिवार के लोगों ने उसको जीत लिया तो सहजयति सर्वान लोकान न संशय, वो सब लोगों को जीत लेता है, सब लोगों को जीत लेता है। आचार्यो ब्रह्म लोकेश है प्रजापत्ये पिता प्रभु, पिता होता है वो प्रजापति का लोक होता है, अतिथि होता है वो इंद्रलोक का स्वरूप होता है, केवल उसको एक मनुष्य नहीं समझना चाहिए, पिता को एक पिता ही नहीं मानना चाहिए, स्त्री को पति को केवल एक पति शरीर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पत्नी को भी पति केवल जो है एक स्त्री की पुतली ऐसा नहीं देखना चाहिए, अपने अपने रूप हैं। भ्राता ज्येष्ठ है समय पित्रा, बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है, इसलिए पिता होता है वो प्रजापति लोक का स्वरूप होता है। तस्माद एतिर अधिक क्षिप्त है सही नित्यम असंज्वर है, अपने से बड़े यदि कभी तिरस्कार कर दे तो उसको बड़े प्रेम से क्रोध रहित होकर सहन करना चाहिए, ये सहन शक्ति को कायम रखने का स्थान होता है। कैसी भी परिस्थिति में मनुष्य को किसी भी प्रकार से क्लेश का अनुभव नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुष्य चक्रधारी भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वानप्रस्थि और सन्यासी के धर्म है, वो अपने बता ही रखे, पहले भी बता दिए थे कि वानप्रस्थि होता है वो ये नाखून बढ़ाए और जो है दाढ़ी वगैरह रखे, वो वनवास के कठोर धर्म है, उनको वो घर में रहते हुए भी पाल सकता है। सन्यासी होता है उसके लिए सारा संसार अपना कुटुंब है या कोई अपना नहीं है, ना भी निंदित मरणम ना भी निंदित जीवितम, जीना मरना उसके लिए बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे रहे वो। ये सब ज्ञान का उपदेश दिया तो उसके बाद जो है अब युधिष्ठिर जी महाराज आगे बात पूछते हैं कि ये सब राजा इतने बड़े बड़े विद्वान थे, इतने बड़े शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र को भी जानने वाले, और एक एक दस दस हजार हाथियों का बल रखने वाले, मर कैसे गए, मृत्यु किसकी होती है ये बताइए। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर पितामह भीष्म आगे के प्रसंग में देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय आनंद कंद भगवान की
जय।